نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن میں کئی جگہ یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے عہدوں کو پورا کریں, جو عہد کر لیں اس عہد کو پورا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اوفو بالعقود, اپنے عہد کو پورا کیا کرو, اس کو وفا کیا کرو. جب کسی سے کوئی کووننٹ ہو جائے, کوئی کانٹریکٹ ہو جائے, تو اس کانٹریکٹ کی پاسداری کرنا یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے, بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا کوئی عہد نہیں, جو عہد کی پاسداری اور پاسبانی نہیں کرتا, اس کا دین بھی نہیں, مطلب اس کا دین ناقص ہے, اس کے اندر خرابی ہے, اس کا دین کامل نہیں, مضبوط نہیں. تو عہد بہت اہم چیز ہے. جب بھی کوئی مسلمان یا غیر مسلم, کوئی بھی شخص کسی دوسرے ملک میں جا کے رہتا ہے, وہاں پیدا ہوا ہو یا ہجرت کر کے آیا ہو, ویزے پر آیا ہو, خالی وزٹر کے طور پر آیا ہو, تو شرعاً وہ ایک کانٹریکٹ میں ہوتا ہے. آپ کو کسی ملک میں آنے دینے کی اجازت یا اس کا سٹیزن ہو کر رہنے کی جو اجازت ملتی ہے کسی بھی پالیسی کے اندر, کسی بھی گورنمنٹ کے اندر, وہ اس بیس پر ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایکسپلیسٹ لکھا ہوا واضح طور پر یا امپلیسٹ کہ انڈرسٹوڈ ہے, ڈیفالٹ ہے, ایگریڈ اپون انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طور پر رہیں گے کہ میں آپ کا حکمران اگر ہوں تو آپ کی حفاظت, آپ کی سیفٹی, آپ کی ویل بینگ, آپ کا علاج, کھلانا پلانا, گھر, یہ ساری ذمہ داریاں میری ہیں کہ میں اس کے لیے آپ کو مینز پرووائڈ کروں کہ آپ کو رہنا آسان ہو, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس میں آپ کو سپورٹ کروں, گویا میں آپ کا ولی ہوں, ولی الامر. اس کے برعکس آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کا اس میں کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ پلٹ کے میرے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کریں گے, جو احکامات میری طرف سے آئیں گے, رول بن کر آئیں گے, ان رولز کو آپ فالو کریں گے, ایز لانگ ایز کے وہ رول, یہ انڈرسٹوڈ ہے پیرنتھیسس کے اندر, ایز لانگ ایز کے وہ رول اللہ اور اس کے رسول کے قطعی کسی حکم کے خلاف نہ جاتا ہو. تو ایسے حکم میں, کیونکہ عموماً احکامات جو اور جو رولز جو ملکوں میں بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے آپ کی ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کے فلاح عامہ کے لیے ہوتا ہے, رفائے عامہ کے لیے ہوتا ہے, تو اس طرح کے کاموں میں سپورٹ کرنا چاہیے. سگنل کا نظام جیسے ہے تو اس کا فائدہ گاڑی پہ, اب آپ کو جو آج کل پوائنٹس لگ رہے ہیں فون چیک کرنے کا, وہ فائدہ کسی اور کو نہیں ہے, صرف آپ کو اپنا ہی ہے یا دوسرے لوگوں کو جو آپ سے محفوظ رہیں گے. تو ایسے جتنے کام کیے جائیں وہ سب شریعت کے اندر بالکل مقبول ہیں اور بالکل محمود ہیں, ایسے کاموں کو کرنا چاہیے اور اس میں بالکل فالو کرنا چاہیے. اس کو نہ کرنا گناہ سمجھنا چاہیے, اور گناہ ہے اسپیڈنگ کرنا, سگنل توڑنا, کیو جم کرنا, یہ سارے کام غلط ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. تو ہم یہ کریں گے, اسی طرح آپ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں گے, یہ ہمارا ان سے کووننٹ ہوتا ہے. تو ہم سارے لوگوں کا یہ ہے, جو لوگ اس ملک میں ہیں, جو لوگ کسی بھی ملک میں, اس ملک سے خاص نہیں, ہر ملک سے. اب جو لوگ یہ نہیں کریں گے تو وہ بددیانتی کر رہے ہیں گے, اس عہد کو توڑیں گے. یہ عہد الامان ہے, یہ عقد الامان کہہ لیجیے, ایسا عقد ہے, ایسا معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو امان انہوں نے ہمیں امن میں رکھا ہوا ہے, ہم نے ان کے ساتھ امن کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اس صورت میں فقہ یہ تک لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو, اگر وہ مسلمان ہے اور غیر مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے, غیر مسلم میں رہ رہا ہے, اور وہاں اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ, اس گورنمنٹ کے یا اس ادارے کے, اس ملک کے ساتھ ان کا جہاد کا سلسلہ ہو جائے, لڑائی ہو جائے, شروع ہو جائے, تب بھی اس شخص کو جائز نہیں ہے کہ وہ لوکل جہاں رہ رہا ہو اپنے لوگوں کی ہیلپ کر کے ان کے خلاف کوئی ہاتھ اٹھائے, اقدام کرے, کسی بھی قسم کا سپورٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کو اپنا وہ ویزا, اپنا وہ پاسپورٹ واپس کرے, اناؤنس کر دے, کہہ دے کہ میں نکل رہا ہوں, نکل جائے, پھر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے جہاد میں حصہ لیتا ہے تو دیا کرے, لیکن وہاں رہتے ہوئے اس کانٹریکٹ کو وہ توڑ نہیں سکتا. اور زبان دے دینا یا عہد کر لینا اور اس کو نبھانا, یہ اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو آپ بیان کرنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس قدر کثرت سے آیات قرآن کے اندر اس کے بارے میں آئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ان العہد کان مسئولا, اپنے عہدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, बहुत ख्याल रखो, उनको बचा के रखो, महफूज करके रखो। जगह जगह अल्लाह सुबहाना तआला ने अहद के बारे में इंसान को कहा है कि औफू बिल अहद, औफू बिल उकूद। तो इस तरह के अहकाम कुरान में जगह जगह आए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जब ईरान बिलाखिर फतह हो गया, तो हुरमुज़ान नाम का एक आदमी किसी इलाके का वहाँ पर जो है वो गवर्नर था, बादशाह के दर्जे में, बहुत टॉप, पूरे मुल्क का नहीं लेकिन एक जगह का। तो बहुत ही अमीर कबीर, जारी बात है, जैसे वो अपने शाहाना अंदाज में रहते हैं, उसने बहुत धोखेबाजी की मुसलमानों के साथ। कई दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अच्छा ये डील, और उसके बाद धोखे से कई एक को पकड़ के मार दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अपना अहद तोड़ता रहा। हज़रत उमर फ़ारूक के साथ जितनी डीलिंग उसकी होती रही, डीलिंग्स में हमेशा वो ट्रेचरस रहा, बदअहद रहा। बहरहाल बिलाखिर अल्लाह सुबहान व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, ईरान फतह हुआ। तो ये ग़ुलाम बनाकर, यानी कैदी बनाकर लाया गया। कैदी बनाकर लाने वाले जो जो लोग सहाबा लेकर आ रहे थे, उनमें से एक अनस बिन मालिक भी थे, बहुत जय सहाबी। और अनस बिन मालिक रदील्ला तआला अन्हु के भाई बरा बिन मालिक, उनको इसने धोखे से कत्ल किया था हुरमुज़ान ने। तो गोया अनस बिन मालिक अपने भाई का बदला भी इससे, क़िसास भी इससे चाहते थे। तो वो लेकर उनको आए खलीफा वक्त हज़रत उमर फ़ारूक अपने मदीने में मस्जिद के कोने में आराम फरमा रहे, सो रहे, और ये अपने ठाट के साथ, शाहाना अंदाज के साथ, अपना ताज और अपने खूब हीरे जवाहरात लगे हुए लिबास के अंदर चलता हुआ जब आया और पूछा उमर फ़ारूक के बारे में, तो बड़ी उसको हैरत हुई। ये बादशाह वक्त पूरी उम्मत पे जिसका ज़ोर चलता है, जिसके नाम से लोग थर्राते हैं, वो ये है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ। बहर इंतज़ार किया गया कि उमर फ़ारूक अपने टाइम पर उठ जाए, फिर वो बेदार हुए, लोगों के सामने अल्लाह सुबहान व तआला की हमद सना बयान की, बताया कि किस तरह अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें अल्लाह की इताअत करने के नतीजे में, अल्लाह के अहकामात को बजा लाने की सूरत में अपना करम फरमा कर हमें ये हुक्म, यानी ये गलबा अता फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फतह कामरानी से सरशार होकर अब यहाँ आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा हमें हुआ, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसी तरह से चलो, अपनी आप वसीयतें और नसीहतें करते रहे लोगों को। इसको देखा तो कहा भी इसका लिबास तब्दील करवा के इसको लेकर आओ, नॉर्मल लिबास में लेकर आओ। तो खैर वो जाके फ्रेश होके आया, अब उसको पेश किया गया। तो तुम्हारे फ़ारूक ने पूछा कि तुम अपने बदअहदियों को जानते हो, याद है तुम्हें सारी? उसने कहा मैं बिल्कुल जानता हूँ, तुम्हें ये भी अंदाज़ा है कि इसका हशर क्या है? उसने कहा कि जी इसका अंजाम भी मैं जानता हूँ, और यही लॉ है और यही कानून है, और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, इसमें मेरी गर्दन कटनी चाहिए, मैं कत्ल के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाएगा? उमर फ़ारूक ने फरमाया हाँ, इसको पानी पिला दो। पानी ला के इसको दिया गया। तो उसने कहा मुझे ख़तरा है कि मेरे पीने के दौरान में मुझे आपको कोई बंदा कत्ल ना कर दे। तो फरमाया कि नहीं, इसका मैं तुम्हें अहद देता हूँ कि कोई शख्स तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि तुम पानी ना पी लो। उसने पानी का कटोरा फेंक दिया, मिट्टी का तोड़ दिया, पानी ख़त्म, गिर गया। तो कहा कि जब तक मैं ये पानी न पी लूँ, उसने ख़ास चुन के अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब तक मैं ये पानी न पी लूँ उस वक्त तक मुझे हाथ न लगाया जाएगा। कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अहद देता हूँ इस बात का। अब उसने उसको तोड़ दिया। तो कहा अब मैं ये पानी नहीं पी सकता हूँ, तो मुझे हाथ न लगाया जाए। उमर फ़ारूक बिल्कुल इस पर बिल्कुल चीन वजबी हो जाना, जो आदमी कहता है कि अचानक से ये तो बिल्कुल ही। तुमने फरमाया कि तुमने तो अल्लाह के दुश्मन बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। कहा तो तुम्हें जबान दे दी भाई। तो तुमने फरमाया कि ये धोखा है। तो बाकी सहाबा भी सारे मौजूद थे, तो सब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अहद की पासदारी तो हमें दीन ने सिखाई, और आप भी समझाते रहे हमें, तो अहद की तो पासदारी करनी पड़ेगी। फरमाया लेकिन मैं तो ये किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस धोखेबाज ने किस तरीके से मामला जो है वो किया, मैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सो अनस बिन मालिक ने भी कहा कि अंदर से खून तो मेरा भी खोल रहा है इससे बदला लेने का, लेकिन अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म है, हम ये अहद नहीं तोड़ सकते। चुनाचे से तुम्हारे फारूक ने कहा कि अब तू मुझे ऐसा न कर, इस बुरे हाल में न डाल, कम अज़ कम इस्लाम ही कबूल कर लेके तुझे मैं माफ़ कर दूँ। आपने उनको इस्लाम की तरफ दावत दी, और उनकी तरगीब से जब उसने देखा कि वाकई लोग ऐसे हैं कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को छोड़ सकते हैं, और छोड़ दिया है, तो ईमान ले आया। कहने का मतलब यह कि ऐसी कड़ी सूरत में भी जो अहद था उसको नहीं तोड़ा, साबत तैयार नहीं हुए, अपने भाई का किसास बदला लेना है, अहद नहीं तोड़ा। और वो वाकया भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी तफसील पहले कई दफा गुजर चुकी, किस तरह उस एक शख्स के जिसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, उसके हाथ से कत्ल हो गया दूसरा बंदा उमर फारूक ही के ज़माने में रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि वो अब कोई उसको उसकी ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है। बिलाखिर जब किसी ने ज़मानत न दी तो एक अल्लाह का बंदा उठा सहाबा में से, उसने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ। जहन में नाम है कौन थे सहाबी?
अबू ज़र ग़फ़ारी।
अबू ज़र ग़फ़ारी ने रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि मैं ज़मानत लेता हूँ इनकी। ज़मानत ले ली, जानते भी नहीं। वो चले गए अपने बाल बच्चों का मामला कुछ करना था, जल्दी से निपटा के मैं आ जाऊंगा। 3 दिन की मोहलत है, 2 दिन, तीसरा दिन गुजरने वाला है, कोई आसपास पता ही नहीं। और बंदे का ना एड्रेस मालूम, ना शहर मालूम, तफसील कुछ मालूम ही नहीं। वो अल्लाह का बंदा बिलाखिर, वो जो 2 भाई थे जिसने कहा कि हमारा ये हमारे बाप का कातिल है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तब तो जिसने ज़मानत ली है उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। और ज़मानत लेने की वाले के लिए अबू ज़र ग़फ़ारी, उमर फ़ारूक बड़े परेशान हैं, कहते हैं अबू ज़र मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, तुम जानते हो, तुमने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ली? अब देखो वो बंदा गायब, क्या किया जाए? अबू ज़र ग़फ़ारी ने फरमाया, मेरे मोमिन के जो हुआ हो गया, मैं तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ, जो बात है हो चुकी। और बिलाखिर यही हुआ कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह के खूब बिल्कुल सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले वो अल्लाह का बंदा पहुँच गया। पहुँच गया तो अजीब व गरीब हाल। अबू ज़र ग़फ़ारी तो तैयार थे कि गर्दन गई, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया, वो बंदा आ गया। तो उमर फारूक बड़े हैरान हुए कि तू कैसा अजीब आदमी है, तू पलट के कैसे आ गया? मतलब खुशी भी हुई कि मेरे साहबी बच गए, मेरे नबी के इतने करीबी साथी, लेकिन हैरत भी हुई कि ये कैसा आदमी है जो पलट के चला आया। इसको तो कुछ जानता भी नहीं था, हम तो पलट के इसको निकाल भी नहीं ला सकते थे कि कहाँ है किधर गया। उस ज़माने में कोई एड्रेस की सूरत थोड़ी थी कि आप ट्रैक कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। कहा तुम आए क्यों वापस? बल्कि उससे पहले अबू ज़र ग़फ़ारी से पूछा कि तुमने जो है वो कैसे कैसे अजनबी की मदद कर दी और उसकी जो है ज़मानत दे दी, किस भरोसे पर? फरमाया कि मैं नहीं चाहता था कि कोई शख्स कभी ये कहे कि इस्लाम पे ये वक्त आ गया कि कोई किसी की ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने अल्लाह की खातिर इसके लिए ज़मानत दी। और उस शख्स ने भी ये कहा कि मैं भी यही सोच के आया, मुसलमान थे वो, कि मैं भी ये सोचकर वापस आया कि कोई ये ना कहे कि मुसलमानों में अब अहद नहीं रहा। उन दोनों की ये कैफियत देख के जो दोनों भाई, उन्होंने भी माफ़ कर दिया कि भाई इतने बड़े ऐसे अच्छे लोगों को हम उनसे खून का बदला नहीं लेना चाहते, कि तुम जैसे लोग ज़मीन पर ना रहे, माफ़ किया। तो ऐसी मिसालें लोगों ने और सहाबा कराम ने कायम की हैं अहद को पूरा करने के लिए, कि आदमी हैरान होता है कि ये इतना आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। पस मंजर तो आप जानते हैं क्या चल रहा है, 2 दिन पहले क्या हुआ है। इस कदर जुल्म है ये, इस कदर जुल्म है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके बारे में इतना सा भी दिल में ख्याल नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोग जिहालत ये करते हैं कि इसके लेकिन यूं और लेकिन वहां और लेकिन यहाँ, या लेकिन मीडिया, या लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी, ये सब बददियानती की अलामत है। आदमी को खालिसतन इंसाफ पे खड़े होकर ये बात कहना चाहिए कि जुल्म है और गलत है किसी भी सूरत में, इसके आगे पीछे कोई और बात है ही नहीं। जो शख्स किसी भी मजलूम को बिला किसी उजर के, बिला किसी सबब के कत्ल करता है, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, मिन अजली ज़ालिक, हमने ये लिख दिया बनी इसराइल पर, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सम बगैर नफ्स, के जिसने किसी को बेगुनाह मारा, किसी ने कत्ल नहीं किया था उसके बदले में कत्ल किया जाता है तो बेगुनाह ना हुआ, वो तो किसास है। और फसाद इन फिल अर्द, ना उसने ज़मीन में कोई फसाद फैलाया था कि उसको सज़ा देने के लिए करप्शन किया था, उसकी वजह से उसकी सज़ा ये बनी कि कत्ल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी ने डाका डाला हो या और कोई ऐसा चोरी थी तो हाथ कटा, फकअन्नमा कत्ल अन्नास जमीआ, तो गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल ईमानु बिदउ व सबउना शोबा, एक रिवायत में अल ईमानु सित्तूना, बिदउ व सित्तूना शोबा, 60 से ज़्यादा शोबे ईमान के, 70 से ज़्यादा शोबे ईमान के, सबसे अफजल उसमें अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सबसे ऊंचे दर्जे का शोबा है ईमान की, सबसे आला शाख तौहीद, सबसे हल्की शाख, नीचे की शाख अगर सबको लिखा जाए जितनी भी शाखें हैं, तो आखिरी शाख क्या है? इमातुल अज़ा अन तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा देना। रास्ते में तकलीफ दे चीज़ें फेंकना क्या है? कुफर का शोबा, जैसा कि मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातहू ने फरमाया अपनी किताब में, कि मफहूम मुखालिफ ये बनेगा अल्लाह सुबहान व तआला हमें जो है हुक्म देते हैं कि हम अहदों को की पाबंदी करें, पासदारी करें। इंसानी जान की बहुत अहमियत है। वलकद करमना बनी आदम, हमने आदम को बहुत मुकर्रम बनाया है। लकद खलकतल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया है। अल्लाह ने आदम को, बनी आदम को इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है कि दीन के जितने भी अहकाम आते हैं शरीयत में, वो मकासद शरिया या जो हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए होते हैं। हर एक उनमें से एक या दो पर अप्लाई होता है, इस वजह से या इस वजह से या इस वजह से, या इंसानी जान बचाने के लिए होता है वो हुक्म शरीयत का, या इंसानी या इंसान का ईमान बचाने के लिए होता है यानी इस्लाम, या इंसान का माल बचाने के लिए होता है, या उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए होता है, या उसकी नस्ल बचाने के लिए होता है। सारे के सारे शरई अहकाम इन पांच चीज़ों को, कि जो इंसान ही से मुतालिक है, इसीलिए पूरी कायनात का इंसान अशरफ और सरदार, सारी मखलूक उसके ताबे। सख़र लकुम माफ़ी समावाते व माफ़ी दर, मुसख़र कर दिए तुम्हारे लिए ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब कुछ। ऐसी ऊंची हस्ती के जिसको अल्लाह सुबहान व ताला ने अशरफ बनाया, सबसे ज़्यादा मुकर्रम बनाया, उस हस्ती का, उस ज़ात का, उस मखलूक का खून बहाना, उसको तो तकलीफ देना भी जायज़ नहीं है। इसीलिए फरमाया अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और ये हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, इसकी शरह में उल्मा लिखते हैं, इमाम नवोवी रहमहुल्ला फरमाते हैं और दीगर आइम्मा भी इसी तरीके से मुहद्दिसीन भी, कि इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान सब शामिल हैं, किसी को भी तकलीफ नहीं दी जा सकती ज़बान से या हाथ से। ज़बान और हाथ से तकलीफ देना किसी को, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये उसके ईमान को क्वेश्चन करने वाली चीज़ है, उसके ईमान को नाकिस बताती है जो ऐसा करे। और हाथ से तकलीफ देना या ज़बान से तकलीफ़ देने के बराबर कत्ल करना कहाँ पहुँचेगा, उसका क्या मकाम है, कितना ऊंचा गुना है, कितना बड़ा गुना है, कबायर में से है, अकबरुल कबायर में से, मुबिकात मूंड देने वाली गुनाह जो है साथ उसमें से है, इतने खतरनाक गुनाहों में से। लैलतुन निस्फ मिन शाबान आया चाहती है, आने वाली है, उसमें जो 15वीं शाबान जो आती है उसके अंदर, जैसे शब बरात कहते हैं, शब बरात, उसमें जिन लोगों की मगफिरत हो जाती है उनके कितने ही गुनाह क्यों ना हो, सिवाय दो लोगों के, एक रिवायत में मुशरिक और मुशाहिन, एक में मुशरिक और कातिल, कातिल की उस रात भी बख्शिश नहीं होती। कितनी सख्त सज़ा है कि उस रात में भी अल्लाह सुबहान व तआला उसको माफ़ नहीं फरमाते, ऐसा गुनाह है। तो अब किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना या गैर मुस्लिम को तकलीफ़ देना, इसकी इजाज़त नहीं, तो उसको कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह होगा, इस बारे में कितना एहसास होना चाहिए। चुनाचे गज़वे के दौरान, जिहाद के दौरान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम बिल्कुल क्लियर है कि किसी बेगुनाह बच्चों को, बूढ़ों को, इसी तरीके से औरतों को कत्ल नहीं करना। इस पर भी डिस्कशन होता है फुकहा के दरमियान कि अगर कोई औरत हाथ में तलवार लेकर हमला करना चाहे मुसलमान पे और कर रही हो, तो अपने दिफा के लिए उसको मार सकते हैं कि नहीं, तो इस पर भी डिबेट है कि कर सकती है कि नहीं कर सकती। बाज़ उसमें भी इजाज़त नहीं देते, बाज़ इजाज़त देते हैं। और ये तो इत्तेफाकी मसला है कि अगर आम औरतें वैसे आई हुई हैं उसमें और डायरेक्ट आपसे उनका कोई टाकरा नहीं हो रहा, वो कुछ कर नहीं रही, तो आप हाथ नहीं लगा सकते। औरतें, बच्चे, बूढ़े, माजूरीन, कितने लोगों को आप यतीम कर रहे हैं, कितने लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, कितने लोगों की आप जानें ले रहे हैं, और आप समझते हैं कि दीन की कोई खिदमत है, सिर्फ नफ्स परस्ती और हवा परस्ती, शैतानी ही शैतानी, इसमें कोई खैर नहीं, इस्लाम का इससे कोई दूर का वास्ता नहीं, बल्कि ये इस्लाम दुश्मनी है, क्योंकि आप इस जरिए लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं, दीन के सारे रास्ते ख़राब कर रहे हैं, आप उन लोगों को मुसलमानों से उनके अच्छे किरदार की तरफ आने नहीं देते, ये बैरियर बना दिया है आपने ताकि वो दीन पर ना आए, और आप समझ रहे दीन की खिदमत कर रहे हैं, सरासर शैतानी और खिबासत है। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे वरना तबाह बर्बाद करे, ऐसे लोगों का किसी सूरत में न साथ देना चाहिए। ये खवारिज किस्म के लोग, खारिजी मैंटेलिटी रखने वाले लोग हैं, इनको अल्लाह सुबहान व तआला हिदायत दे ताकि उनकी दुनिया और आखरत संवर जाए, वरना इनके लिए भलाई की कोई चीज़ बची नहीं है, न दुनिया में न आखरत में। तो ये बहुत ही तकलीफ़ दे एपिसोड है जो हुआ, और ऐसे बार बार हो रहे हैं, ये करते इसीलिए ताकि इससे माशरा ख़राब हो, जो जज्बाती नौजवान है उनको वो कैश कराएं, उनको अब उनके लीडर बनकर उनको अपने तरफ करें, ताकि ये उनको समझे कि देखो ये हक बात करने वाले, हम इनके साथ हैं। इधर उधर के सेंटिमेंट्स को उभार के और उछाल के, मजलूमों के इधर उधर की कहानियां सुना के, देखो वहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, और उसका जवाब ये कि हमें ये करना चाहिए। फिर यूं करेंगे कि जनाब डेमोक्रेसी में चूंकि सब सारे शामिल हैं, सबको पकड़ के मारो, कोई मौलवी हो या कोई कोई भी हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान, सब बराबर है, सब लेजिटिमेट, हराम है। ऐसा सोचना भी जिहालत की मेंटेलिटी है, बिल्कुल गलत मेंटेलिटी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए इन हज़रात के हक़ में जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, परेशानियों में हैं, जहाँ जहाँ हैं, कि अल्लाह ताला उनको सब्र व ज़ब्त भी अता फरमाए, और हमारे लोगों के लिए भी कि हम सोचें और समझें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ। और ज़ाहिर बात है दिल दुखी होने चाहिए, किसी भी इंसान को तकलीफ़ हो तो दिल दुखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस बुखारी शरीफ में उस औरत के बारे में कि जिस ने खूब इबादत की और मामलात उसके नमाज रोज़ा तहज्जुद सब चलता रहा, लेकिन एक बिल्ली को घर में बांधे रखा, जिसको न छोड़ती थी कि वो अपने लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर ले, और ना उसको खाना खुद देती थी, तो भूख से मर गई वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो जहन्नम में देखा मैंने उसको, इस बुनियाद पर जहन्नम में देखा। एक जानवर को तकलीफ देने पर यह हाल है, तो इंसान को तकलीफ देना आसान काम है, उसके बदले में आपके साथ क्या मामला होने वाला है? तो तुम्हें झूठे और धोखेबाजी के नारे लगा के जन्नत की बशारतें देकर, लोगों को अपनी तरफ से दीन को अपने हाथ में लेकर, सरीहन गलत और शैतानी अमल है। अल्लाह सुबहान व तआला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाया। कुलू कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहू इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम।